मेरे जिगरी नौजवान साथियों नमस्कार। आज 31 जनवरी 2020 है और आज के इस AFAIS के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं, तो सबसे पहले मैं सूचनाएं देना चाहूंगा। और सूचना यह है फ्रेंड्स कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वे शनिवार को आपको एज इट इज मिलेंगी। साथ ही साथ शनिवार को आपको योजना के 2 आर्टिकल और कुरुक्षेत्र के 2 आर्टिकल मिलेंगे, टोटल 4 आर्टिकल्स। इनमें से 2 आर्टिकल इंग्लिश के होते हैं और 2 आर्टिकल हिंदी में होते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से हिंदी और इंग्लिश के आर्टिकल एक ही का ट्रांसलेशन होता है, यानी कि टॉपिक बिल्कुल एक ही होता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने अनुसार भाषा का माध्यम चुन सकते हैं। हाँ, यदि आपको लगता है कि आपका काम आपके काम का नहीं है, आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो आप उसे बड़े आराम से छोड़ भी सकते हैं। और स्पेशली मैं एक बात यहां आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि देखिए, जो योजना और कुरुक्षेत्र में आर्टिकल छपते हैं वो काफी विस्तार के साथ होते हैं, रिसर्च बेस्ड होते हैं, उनमें आंकड़ों की भरमार होती है। लेकिन उसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि ये चूंकि सरकारी मैगजीन है, तो ये जो आर्टिकल छप रहे हैं इनमें जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, उन पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो आप कभी ये मानकर ना चलें कि इतना बड़ा आर्टिकल है और ये पूरा आर्टिकल आपके काम का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा ही आपके काम का होता है, लेकिन उस हिस्से को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि यही हिस्सा आपका काम का होगा। इसलिए पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसका एक छोटा सा नोट्स तैयार कर लें, बस उतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक वीकली क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाता है मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आपके अभ्यास के लिए, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत मैं आज आप सबसे प्राणी संरक्षण संबंधी कुछ योजनाओं की झलकियां बताना चाहूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। आज 31 जनवरी है, कल बजट पेश होगा और आज संसद का हमारा जो बजट सत्र है शुरू हो गया है। जब भी संसद के बजट सत्र की शुरुआत होती है, यानी कि वर्ष की शुरुआत में ही जब संसद बैठती है, तो पहली जो बैठक होती है संसद की, तो आप जानते हैं हमारे संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। और उस संयुक्त अधिवेशन में हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, याद रखिए वो किसी एक सदन को यहां संबोधित नहीं करते हैं, इसलिए मैंने कहा वो संसद को संबोधित करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दो के सदस्य एक ही साथ बैठते हैं। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति हमेशा अपने भाषण में मेरी सरकार, मेरी सरकार, मेरी सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं। सच में संवैधानिक दृष्टि से जो सरकार होती है वो राष्ट्रपति की ही होती है। प्रधानमंत्री तो एक प्रकार से अपने कैबिनेट के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करते हैं, लेकिन चलिए व्यावहारिक स्तर पर चूंकि हमारे यहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो वो एक अलग तरीके से फंक्शन करती है। मैं संविधान की बात कर रहा हूं। तो इस अभिभाषण में सरकार की अब तक की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं इसकी चर्चा होती है, और साथ ही साथ सरकार आगे क्या करने जा रही है उसका भी एक रोड मैप प्रोवाइड किया जाता है। तो जब राष्ट्रपति के अभिभाषण को आप सुनते हैं या अखबारों में जब आप इसके बारे में कुछ खबरें पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ बहुत अच्छे डेटा आपको मिल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उन महत्वपूर्ण डेटा को आप नोट कर लें। और चूंकि कल बजट पेश होना है, इसीलिए आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आएगी। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आती है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट भी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी मायने रखती है, और खासकर उसमें जो सोशल सेक्टर वाला पोर्शन है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस बीच में 2 दिनों का गैप होगा, इस बीच में बजट भी आ चुका होगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सोमवार के डेली ऑडियो लेक्चर में इस पर कुछ बातें कर सकें। दोस्तों, एक है थर्मल स्क्रीनिंग शब्द, अभी आप सुन रहे हैं, है ना, जो कोनो वायरस जो चीन में इतना फैल रहा है और पूरी दुनिया में एक तरीके से आप यू कह लीजिए तहलका मचा हुआ है, उसको लेकर के आप बार बार ये सुन रहे हैं खबरों में कि भारत ने थर्मल स्क्रीनिंग की शुरुआत की, यानी कि चीन से जो प्लेन आ रहे हैं उनके यात्रियों को बकायदे एयरपोर्ट पर रोका जाता है और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, और उन्हें फिर जब संदिग्ध मिलते हैं तो बिल्कुल एकांतवास में कुछ समय के लिए रखा जाता है, इस तरह की खबरें पढ़ रहे हैं। तो ये जो थर्मल स्क्रीनिंग क्या है, बस थोड़ा सा जनरल नॉलेज की दृष्टि से प्री को ध्यान में रखते हुए आप जान लीजिए। देखिए, थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल, थर्मल का मतलब है थर्मामीटर, तापमान, थर्मल प्रोजेक्ट, अब कहते हैं ना थर्मल प्रोजेक्ट, तो जहां कोयले से बिजली बनाई जा रही है, तो थर्मल का मतलब भी होता है तापमान, मोटे तौर पर थर्मामीटर, जिससे शरीर का तापमान नापा जाता है, थर्मा, थर्म। स्क्रीनिंग का मतलब है जांच पड़ताल करना, तो कुछ नहीं है, शरीर की जांच पड़ताल करने की एक, आप कह लीजिए एक उपकरण होता है जिससे शरीर की जांच पड़ताल की जाती है। किस चीज की जांच पड़ताल की जाती है? टेम्परेचर की, कि शरीर के का टेम्परेचर इसका कितना है, और उसके आधार पर यह देखा जाता है, शरीर के तापमान के आधार पर, कि कहीं वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, पता लग जाता है कि वायरल इन्फेक्शन की संभावना है या नहीं। कुल मिलाकर के यही है थर्मल स्कैनिंग। दोस्तों, ब्रेग्जिट का आज आखिरी दिन है, ब्रेग्जिट का आखिरी दिन ही कहना चाहिए, आप यूं कह लीजिए कि जो ब्रिटेन है, जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज तक तो है, आज रात के बाद वह ब्रेग्जिट का हिस्सा नहीं रह जाएगा। ब्रेग्जिट बहुत लंबी कहानी इसकी है, आप सब इसके बारे में खूब सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जून 2016 में एक जनमत संग्रह कराया गया था ब्रिटेन के द्वारा, जिसमें ये लोगों से पूछा गया था कि आप यूरोपियन यूनियन में बने रहना चाहते हैं या नहीं। बहुत थोड़े अंतर से ब्रिटेन के लोगों ने यह फैसला किया कि नहीं, हम यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहते हैं। इसके बाद लंबी जद्दोजहद चली, ब्रिटेन में भी काफ़ी राजनीतिक उठापटक हुई, और अंततः अब जाकर यह फाइनल हो गया है कि आज यानी कि 31 जनवरी को जो ब्रिटेन है वो एक, आप कह लीजिए, यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, आप यूं कह लीजिए दुनिया के परिदृश्य में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया, और उसके बाद ही ये यूरोपियन यूनियन बना था। 28 देश इसके मेंबर थे, और ये एक दूसरे से आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी करते हैं, मतलब आप यूं कह लीजिए कि ये जो यूरोपियन यूनियन के देश थे किस तरह से एक थे, आप इस मायने में समझ सकते हैं कि जैसे आपको किसी भी देश में जाने के लिए उस देश का वीजा लेना पड़ता है ना। ब्रिटेन का वीजा तो आपको अब भी लेना पड़ता था, मतलब जब ये यूरोपियन यूनियन का था तब भी आप ब्रिटेन के अलग वीजा लेकर के ही जाते थे, लेकिन बाकी जो देश थे एक ही वीजा से आप सभी देशों में जा सकते हैं। बकायदे यूरोपियन यूनियन की एक संसद है, उसका एक अध्यक्ष होता है, वहां वो लोग बैठते हैं, फैसले लेते हैं, यानी कि पूरे ये जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश थे, आप यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं एक राष्ट्र जैसे थे, इनकी अपनी मुद्रा भी अलग थी जिसे हम कहते हैं यूरो। अब ब्रिटेन उससे अलग हो गया है, और ब्रिटेन अलग होने है उसका कारण ये था, उसको लग रहा था कि नहीं, अब उसकी वहां चलती नहीं है, और बेवजह इसकी वजह से ब्रिटेन को नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, दूसरे देश के लोग ब्रिटेन में आकर के रह रहे हैं तो इससे ब्रिटेन के पर आर्थिक दबाव पड़ रहा है, ब्रिटेन के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ब्रिटेन की संस्कृति को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहां के लोगों का सोचना था, और अंततः अब ब्रिटेन उससे अलग हो गया है। 1973 में ब्रिटेन उससे जुड़ा था। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी है यूरोपियन यूनियन के बारे में कि ब्रिटेन कैसे अलग हो रहा है, ये ब्रेग्जिट है। यहां जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन रहा है वो दरअसल ये बन रहा है कि अब चूंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कुछ प्रभाव के बारे में अभी बात की जा सकती है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ठीक है, अभी थोड़े से आर्टिकल्स आ जाएं, एडिटोरियल कमेंट्स आ जाएं, तो फिर यदि संभव हुआ तो इस विषय पर हम लोग एक मुकम्मल तौर पर बात करेंगे। अदरवाइज मैं आपको अभी से सतर्क कर देता हूं कि इस प्रश्न को लेकर जहां भी आपको कुछ पढ़ने को मिलता हो लगातार आप पढ़ें और नोट भी करते जाएं, हो सकता है कि मेन एग्जामिनेशन में यह प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछ लिया जाए। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। खासकर जो मैंने इस विषय को चुना है उसका कारण यह है कि आपने देखा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने चीता को, अफ्रीका से चीता को भारत में लाने की अनुमति दे दी है। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की थी। ये जो अंग्रेजी का हिंदी का शब्द है चीता, और चीता, और इंग्लिश में भी इसे चीता ही लिखा गया अखबारों में, CHEETAH, चीता। वैसे मैंने जब जानने की कोशिश की तो इंग्लिश में इसे लेपर्ड कहते हैं, लेकिन लेपर्ड का हिंदी में तेंदुआ है, तो बेहतर होगा कि आप इंग्लिश में भी चीता शब्द का ही प्रयोग करें। हम हिंदी में चीता लिखते हैं लेकिन स्पेलिंग में लास्ट में एच है, CHEETAH CITAH, चिता। दोस्तों, जब सन 1900 के आसपास इसकी काउंटिंग हुई थी तो यह था कि पूरी दुनिया में लगभग 1,00,000 चीता हैं, और अब यह माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में अब इनकी संख्या घट करके 7,000 के आसपास रह गई है। भारत में तो बिल्कुल खत्म से ही हो गए थे, तो इसीलिए भारत ने अनुरोध किया था सुप्रीम कोर्ट से कि उन्हें चीता को बाहर से लाने की अनुमति दे दी जाए, तो और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक संगठन है IUCN, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, या यूं कह लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सबसे पुराना संगठन इसको आप कह सकते हैं। 1948 में यह संगठन बना था। इसने चीता को वल्नरेबल सूची में डाल दिया था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुभेद्य, यानी कि इस तक ये अब जब बस खत्म होने के करीब हैं, इन तक आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, इनकी संख्या बहुत तेजी के साथ घट रही है, जिसे हम कहते हैं वल्नरेबल सूची में डाला था। इसके पास कई सूचियां हैं जिसमें यह है कि जो खत्म हो चुके हैं वहां से लेकर के और जो संकट में हैं वहां तक की सूची ये निकालते रहते हैं, लेकिन अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उनके बारे में चर्चा करूं। लेकिन इस संगठन के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए, पर्यावरण के सिलेबस में ये संगठन मुझे लगता है कि आपके काम का है। तो आप देखिए कि भारत ने किया क्या है। भारत ने बहुत से ऐसे अपने प्राणी या ऐसे जीव जंतु जो लगभग समाप्त होने के करीब हैं, या सरकार को लगता है कि अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो ये समाप्त हो सकते हैं, उनके लिए अलग अलग परियोजनाएं बनाई हुई हैं। आपको चाहिए कि इन परियोजनाओं पर आप तैयारी करें, और इन पर प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं, अगर मेंस में नहीं तो प्री में तो जनरली कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। बाघ परियोजना पर हम लोग इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं। दूसरे परियोजनाओं में मैं आपको केवल नाम भर बता रहा हूं ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो सके। हाथी परियोजना है, एलिफेंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, गंगा डॉल्फिन योजना है, समुद्री कछुआ परियोजना है, सी टर्टल प्रोजेक्ट, गिद्ध संरक्षण परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, वल्चर्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, हंगुल परियोजना, प्रोजेक्ट हंगुल, यह एक हिरण है यूरोपीय प्रजाति का, फिर है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ये भारत की बहुत ही आप यूं कह लीजिए कि सफल परियोजनाओं में से एक है, और इसी तरह से है गैंडा परियोजना, प्रोजेक्ट राइनो। ये कुछ परियोजनाएं हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी रख लेनी चाहिए, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मैं ये बात आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक अखबारों की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने अनुसार उन्हें देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अनूप राज, गौरव मेघवाल उदयपुर से, पायल खत्री उदयपुर से, उमेश तालेकर, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, और अमृत लाल चाकरे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। इन 2 दिनों के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।